पास में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं इसकी कल्पना करिए। मैं वही राधा, आप हो सकता है कि उसके फूल चयन करके हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, मैं वही राधा। उनको याद आने लगी वो सब की पहले की बातें, सब कुछ याद आई, पूर्व रात का मान का और सब बातें याद आने लग गई। तो वही करें वही राधा में विषंतम स्त्री वेशम सुबल सुखया बार विराज। सुबल का सखा है ये, वेश बदलने में बड़ा चतुर और इसके बातों का कोई विश्वास नहीं, इसलिए इसको वहीं पर रोक दिया। तो क्या किया, अरे परम ब्रह्म साक्षात होने पर भी वो प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसकी मैं रोज वंदना करता हूँ, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले यस्या कदा स्मृधे विश्वानुजाया ततकेलि कुंज भवनांगन अन्येषा। उनको धीरे धीरे याद, रोमांच इत्यादि होने लगे, कृष्ण को भी याद आने लगी वो सब चीजें जब ये स्मरण कराने लगी। कृष्ण सुनते रहे, सुन रहे हैं और उनको पूर्व स्मृति याद जगने लगी। सो आप वही और मैं एकदम पूरा याद हो गया, पूरा याद करा दिया। करें मनुमेश कालिंदी पुलिन विपिन आयस प्रियति, जिस पुलिंदी वन के अंतर्गत में संकेत बन इत्यादि, ये मत समझना जैसे वहां पर संकेत माने दोनों बरसाना और वह, यहाँ पर भी है दोनों वृंदावन में भी, जमुना पुलिंद के अंदर यहीं पर उनकी राशि इत्यादि है। स्वच्छंद गति से वहां पर उनका रास हुआ, उनका मिलन हुआ। तो भाई मेरा मन कालिंदी पुलिन विपिन आय, पुलिन जो उसके किनारे उपकुल में जो बन है वहीं पर मिलने के लिए आतुर रहा, जहां पर मधुर मुरली पंचम जुसे, वो मुरली को आप कैसे बजा रहे हैं या मुरली खुद बज रही है, पंचम जुसे माने सारे गम पंचम जुसे, और राधा जी की कैसी कैसा स्वर है, वो सप्तम है, बंसी को भी पार करके ऊपर में चढ़ जाती है। इसको सुन करके कृष्ण भी साधु साधु करते हैं। हमारा मन, हमारे मन में अंत खेलन, ऐसी सब भावनाएं हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे मन को तरंगायित कर रही हैं। हमारा मन वहीं पर वृंदावन में यमुना के तट पर, यहां पर किए सुंदर दृश्य हैं, वहीं पर मिलने के लिए आतुर हो रहा है राधा जी का। कृष्ण भी भाव में विभावित हो गए और वो भी राजी हो गए। साधक इन सब चीजों को मनी मन में चिंतन करेगा। ये तो एक उदाहरण हमने दिया स्वयं के लिए, और ये सब के लिए कालिंदी पुलिन इत्यादि के लिए बतलाया, दो एक उदाहरण, हजार उदाहरण से भक्तिनोद ठाकुर जी उस समय में सवेरे प्रभात के लीला को एकदम उसी का समय, चित्त कहीं नहीं जाए, दिन रात इसका स्मरण करके वो रोता है, कलपता है, अश्रु कंप पुलक इत्यादि सब, ये सब भाव भक्तों के ये अष्टम ज्ञान में साधन जो है उसके लिए संभव है। ऐसी लीलाओं का भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावन लीला समान लीला नहीं यार, वृंदावन ऐसी जो वृंदावन की लीला है उसके समान और लीला, उच्छेत्र का मिलना था किंतु वो मिलने में आनंद नहीं, क्यों, हाथी घोड़े सैनी और नवृत्त नुकुंज इत्यादि नहीं, वहां पर सब प्रकार के लोग, वहां पर विपरीत सब, सब कुछ विपरीत, अनुकूल कुछ नहीं, और सबसे विपरीत क्या चीज है, क्षत्रिय भाव, क्षत्रिय रूप, आपका वेश और विचारी सब। उस समय आपके विचार में मैं वसुदेव देवकी का बंसी हाथों में नहीं, गोपाल वेश नहीं है, सखाओं का भाव नहीं है वृंदावन, नंद और जसोदा को अपना माता और पिता आप नहीं मानते, इस रूप से हम लोगों को आनंद नहीं भगती, इसे क्षोभ होता है। क्षोभ माने क्या है? क्षोभ और दुख में कुछ अंतर है? क्षोभ माने क्या है? बहुत उत्कंठित होकर के जो दुख होते हैं वो क्षोभ है। मिली 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 नहीं मिली, इसमें क्षोभ होता है। कोई अपना व्यक्ति यदि कुछ ऐसा करता है ना जिसकी कोई संभावना नहीं, तो उसमें होता है क्षोभ होता है। बैकुंठात दे, बैकुंठ में इन लीलाओं का प्रचार। यहां क्या विश्व में कहीं भी वृंदावन को छोड़ करके, चाहे यह वृंदावन भले यहां हो और चाहे गोलोक वृंदावन में, इसलिए बैकुंठ आद्य मैंने बैकुंठ में, उससे ऊपर रामलोक में, अयोध्या में, उससे ऊपर में, उसके ऊपर में है वो गोलोक, गोलोक में भी नहीं, द्वारका में नहीं, मथुरा में नहीं, कहीं भी उस लीला का प्रचार। वृंदावन में भी, गोकुल में भी नहीं, और सब जगहों में नहीं, वृंदावन में ही केवल, महाबल में भी नहीं होगा कहीं भी नहीं। ये यहीं पर वृंदावन नहीं, नंदगांव बरसाना ये वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, ये सब इधर में एक, इसमें 16 कोष वाले में होगा। बैकुंठ में सब लीलाओं का प्रचार, ब्रज जय लीला ताहे विच्छेद संभो। ब्रज की जो लीला है इसमें विच्छेद है भी और संभोग भी, मिलन भी है। द्वैत परानंद सदा कर भो, ये दोनों परमानंद स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका चिंतन करके यदि साधक इस स्थिति में, आठवीं स्थिति में, तो इस सब का आनंद दिन रात उसमें, उसको कोई समय एक मिनट के लिए नहीं मिलेगा जो कि इस जगत का कोई चिंतन है, अपने शरीर का चिंतन नहीं करेगा। जैसे रूप सनातन जी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का, इन सब लोगों का होगा, महाप्रभु जी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, इन सब लोगों का है। विशेष करके हम लोगों में ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी पीछे से रूप गोस्वामी जी धारण उनका होता है। इस तरह से साधक चिंतन करेगा और उस लीला में डूब जाएगा। ये हमारा अंतिम उद्देश्य, किंतु इसको पूर्ण करने के लिए पहले से हमको चलना पड़ेगा श्रद्धा से, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि से चलना पड़ेगा, तब उसमें पहुंचे, किंतु उद्देश्य यही होना चाहिए। इसके बाद में राधा कृष्ण की मिलन लीलाओं का वर्णन किया। श्रृंगार की रचना की और तब ले आए तब कथामृतम तप्त जीवनम कभीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम सीमादतम भूमि कृणंतिते भूरी जाते। हम लोग उस सब लीलाओं के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए दो श्लोकों को यहाँ पर हम लोगों ने छोड़, इसलिए साधन उचित में हम लोग प्रवेश करें, उनके श्रवण करने के जिसके हम अधिकारी हैं। तब कथाम तत्त विप्रलम्भ रस, संभोग की तो उन्होंने छोड़ दिया, अब विप्रलम्भ रस में उसका हम लोग कुछ कुछ श्रवण कर सकते हैं। उसी के लिए गोपी गीत भागवत दशम स्कंद 31वां अध्याय में भगवत कथामृतम वितरणकारी महावदान में है, भगवान की लीला दशम स्कंद की लीलाओं का वितरण करने वाले ये लोग जगत में महावदान, किंतु योग्य होने चाहिए। अपने विषय रस में डूबे हुए लोग और इन कथाओं का यदि वर्णन करते हैं तो उसका सार उद्देश्य होता है अर्थ प्राप्ति और प्रतिष्ठा प्राप्ति, ये दोनों ही सुकरी विष्ठा है, ये भगवत भजन में महान बाधक है। इसलिए ऐसे लोगों के मुख से ये सब कथाएं नहीं सुनी जाए, तभी उसमें हमारा कल्याण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रलंब भी बहुत प्रकार का होता है, जिसमें पूर्वराग मान प्रवास सुदूर दूर प्रेम वैचित्र और सुदूर प्रवास, इसमें थोड़े से प्रवास के लिए जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं उसके लिए बताएं। ऐसा साधक भक्त सब समय ऐसी लीलाओं का चिंतन करेंगे, उसके लिए विप्रलंब रस में गोपी गीता भागवत दशम स्कंध 31 अध्याय पठनीय भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। संसार में भगवान की कथा को वितरण करने वाले ही महादयालु हैं। संसार में बहुत से दयालु हैं, दो पैसा का दान करने वाले भी दयालु हैं, बहुत से लोग कंबल खाद्य इत्यादि वितरण करते हैं वो भी बड़े दयालु हैं, कुछ लोग नौकरी इत्यादि दिला देते हैं वो भी दयालु हैं, कन्याओं और बालकों का विवाह दिला देते हैं वो लोग भी बड़े दयालु हैं, जनहित पर कार्य करते हैं सरोवर कुआं पानी के लिए व्यवस्था लाइट की व्यवस्था ये सब करा देते हैं, तरह तरह की ये सब चीजें हैं, दयालुता है। किंतु दयालुता वही सबसे श्रेष्ठ है जिसको दया करने पर फिर अब उसको कोई दुख नहीं होता, वो दया सबसे अमंगल दया दया है, जिसके द्वारा कोई अकल्याण न हो। जैसे हमने दया करके स्कूल बना दिया और स्कूल में ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे कि 1000 गुंडे निकले 2-4 अच्छे निकले, आजकल ऐसी भी शिक्षा, आजकल नास्तिक शिक्षा दी जाती है स्कूलों में, ऐसे स्कूल बनाने से लाभ क्या, बल्कि लड़के और लड़कियां यदि निरक्षर रहें उसमें कोई ठीक है भलाई, भगवान के प्रति विश्वास रहे, किंतु जब भगवान की आस्तिकता ही दूर कर हो जाती है, भगवान नहीं है, ये धर्म सब भकोसला है, भक्ति ठीक नहीं है, माता पिता से हम लोग एक्सीडेंटली जगत में आ गए इसलिए उनके प्रति भी हमारा कोई ऋण नहीं है, ऐसी अधार्मिक शिक्षाओं की कोई जरूरत नहीं। आप लोग तो देख रही हैं कि कैसे कैसे भ्रष्ट लोग आजकल जन्म ले रहे हैं, ऐसी शिक्षाओं को पढ़ करके देश को भी सर्वनाश कर रहे हैं, राष्ट्र को भी नष्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे स्कूल यदि बना दिया तो यही लाभ होगा। यदि हमने अस्पताल बनाए, जितने बदमाश लोग हैं वो अस्पताल में इलाज होगा और सब उनकी क्या होगा, चोरी डकैती बदमाशी सब करेंगे तो उसका फल भी उन्हीं को लेना पड़ेगा। पहले घर घर में वैद्य होते थे, प्रधान रूप में परहेज से रहते थे, संयम से रहते थे, उनको रोग की कोई संभावना अधिक नहीं है। जितने ही अस्पताल स्कूल बनने लग गए उतने ही अधिक ये सब बीमारियां बढ़ने लग गई, लोग अशांत होने लगे और इस प्रकार से सब प्रबंध। इसलिए मान ले कि जैसे लाख अस्पताल को एक व्यक्ति कर दे तो उससे लाभ क्या होगा, यदि सज्जन व्यक्तियों का इलाज होता और वे लाभ होते उनका तो देश को बहुत सा कुछ लाभ होता, बल्कि बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो धनाभाव के कारण वहां तक तो पहुंच भी नहीं पाते, उनका इलाज भी नहीं होता, और की तो क्या बात, ये बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में भी, जैसे रामकृष्ण मिशन इत्यादि वृंदावन में, वो पैसे इसीलिए ले आते हैं जैसे कि इनका लोगों का फ्री निःशुल्क ये सब उपचार हो। किंतु कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं, अस्पताल में कोई रोगी आया, मर रहा है, जल्दी से इसको इलाज कर दीजिए, तो कहते हैं अभी 5,000 रुपया लाओ, 10,000 रुपया लाओ, 100 रुपया लाओ, 200 रुपया लाओ, तब कुछ करें। बेचारे का उसी अस्पताल में दरवाजे पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई इलाज ही नहीं, और वहां पर इसीलिए वो किया गया। तो इसका पाप किस पर लगेगा? इसलिए ये दया का सूचक तो है, किंतु इसमें गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी है, इसलिए ये सचमुच में वह दया नहीं है। किंतु सचमुच दया वह है यदि किसी एक जीव की मनोवृत्ति को घुमा करके भगवान के तरफ में लगा दिया जाए, तो जीवन भर के लिए क्या नित्य काल के लिए उसका कल्याण हो जाए। इसलिए साधु संत लोग इसके लिए दया करते हैं। वो दयालु सबसे कौन है? जो भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए, भगवान के प्रति प्रीति होने के लिए चित्त के वृत्ति को मोड़ देते हैं, ये सबसे बड़े दयालु। इनके समान और कोई दयालु ऊपर से तो मालूम नहीं होता, किंतु यदि कोई निरंतर हरिनाम करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे, भगवत चिंतन करे, भाव व्याधि सदा के लिए मिट जाए, फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये सबसे बड़ी दया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या हमारे शास्त्रों में सर्वत्र ये सब चीजें बतलाई, उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभीरीतम कल्मषापहम समर्ण मंगलम श्रीमदाकतम भुवि गृहन्ति ते संसार में वही लोग सबसे दयालु हैं जो कि आपकी कथाओं का वितरण करते हैं, उसमें भी निःशुल्क वितरण करते हैं, बिना किसी चीज के आशा के वितरण करते हैं, केवल मंगल की, दूसरों लोगों के कल्याण की दृष्टि से। कुछ लोग करते हैं भगवत कथा वितरण, किंतु अपने लाभ के लिए, पैसे रुपए प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए कर, उससे वो कल्याण नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है ऐसी मनोरंजक बातें करेंगे कथा के माध्यम से कि उनमें यही सब बातें, धन की कमाई हो। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित की सभा से कुछ लेकर के गए कि नहीं? शुद्ध गोस्वामी सनों का आदि ऋषियों से क्या लिया? बस उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे ही हरि कथा वह है जिसके द्वारा श्रोता का चित्त सब समय भगवान की तरफ मिला, यही उसका मूल फल, उसे उसका कल्याण। और जहां पर अर्थ ही प्रधान होता है वहां पर वो कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो जो शास्त्र की जो सत्य बातें हैं वो नहीं बतला सकेगा, और घुमा फिरा करके जगत के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन कहेगा, इसलिए वहां पर बतला रहे हैं। ये गोपियां कर रही हैं, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं रास में, और उसके बाद में ये कर रहे हैं। इसका पहला का श्लोक है, मधुर या गिरा बल गुबा गया सुध मनो गया पुष्कर एक क्षण विधि करी इमा जीव मुदी अदर सी धुना पाए। मधुर या गिरा, आप अपनी मधुर गिरा से, वाणी से हमें तृप्त करें, तो कृष्ण आएंगे, साक्षात दर्शन देंगे, तब तो मधुर वाणी बोलेंगे, अंतर ध्यान में। इसलिए वो प्रार्थना कर रही हैं, आप आ करके हमारे निकट और मधुर वाणी में हमें प्रसन्न करें। अदर्शी गुना माने मुझसे ही तो वाणी निकलती है, इसकी यही मधु अमृत के समान है, उनके मुखारवन से निकलने वाली वाणी। इसलिए उच्छिष्ट का तात्पर्य दो होता है, एक उनका उच्छिष्ट प्रसाद और दूसरा उनसे मुख से निकली हुई वाणी। निकली हुई वाणी अधिक उपकारी होती यदि सच्चे संत हैं, साधकों के लिए यह सबसे अधिक उपयोगी चीज है। इसलिए हम लोगों को उनके मुख निश्चित इस अमृत का, अमृत रूपी वाणी का अनुशीलन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उसके लिए बतला रहे हैं तब कथा अमृतम सप्त जीवन। कुछ गोपियां हैं, गोपियां दो प्रकार की, दाक्षिण्य भाव वाली और वाम्य भाव वाली। दाक्षिण्य भाव वाली बतला रही हैं जिनका कृष्ण के प्रति घृत स्नेह है, वो ये का मधु स्नेह वाली जो दूसरी है उनका ये दूसरे प्रकार। तब कथा अमृतम, समस्त शास्त्र ऐसा कहते हैं भगवान की कथा, भगवान का नाम, उनकी लीला कथाएं इत्यादि जीव के लिए अमृत स्वरूप है। भगवान की का नाम और भगवान की कथाएं जीव के लिए अमृत। कैसे, इसका प्रमाण क्या है? हमारे शास्त्रों में इसके बुरी बुरी प्रमाण है। जैसे ब्रह्मा जी अपने सृष्ट इस ब्रह्मांड में, अपने द्वारा प्रकाशित इस ब्रह्मांड में भगवान नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने चिंता जी कैसे इसको किया जाए। उन्होंने सोचा कैसे एक सबसे अधिक संसार का जो महापापी से पापी व्यक्ति हो उस समय, और उसके द्वारा नाम लेकर के और उसको यदि उद्धार करने की कोई बात हो तो उसका नाम, उसके नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा प्रतिष्ठित। इसलिए उन्होंने इसके लिए वाल्मीकि जी को चुना। सृष्टि के प्रारंभ की ये बात है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कब से हैं? प्रारंभ से सतयुग से ही हैं। वाल्मीकि, वशिष्ठ, अत्रि और ये सब जो सप्तर्षि के जो हैं उसमें वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, भरद्वाज, ये सब लोग वेद उपनिषदों में इनका भी नाम आया है। इसलिए ब्रह्मा जी से भी पहले के ये लोग हैं। इस ब्रह्मा के पहले के और पहले जो पहले वाले ब्रह्मा थे उस समय के, कभी कभी ये लोग भी ब्रह्मा हो जाते हैं, कभी कभी व्यास भी बनते हैं, ब्रह्मा होते हैं ये। इसलिए वेदों में इनका नाम देखा जाता है। तो देखने में मालूम होता है व्यास इत्यादि या और सब लोग, ऋषि लोग, नारद इत्यादि ब्रह्मा के पुत्र हैं। पुत्र के रूप में हमको दिखलाने के लिए ऐसा होता है, किंतु वो हैं नित्य ऋषि। तो ये सतयुग के प्रारंभ में वाल्मीकि जी हुए और ब्रह्मा जी ने कौशल करके नारद जी को उनके पास में भेजा। उस समय ये दस्यु थे, नारद जी को मारना चाहा। नारद जी ने कहा ठहर जाओ, बस इतना कहता है और बस ठहर गए, उनका मुद्गत चला नहीं। आश्चर्यचकित हो गए ये, इसके कहने से मैं ये पर रुक गया नहीं तो मैं तब तक मार डालता। उन्होंने कहा इस पाप का कमाई जो तुम कर रहे हो इसका फल कौन भोग करेगा? तुम अकेले करोगे ना, तुम्हारे घर वालों के लिए भी। उन्होंने कहा घर वाले सभी करेंगे इसका भोग, जिसको जिसको ये डकैती का माल देता हूँ, मरने का पाप उनका भी रहेगा। अच्छा तो जाओ पूछाओ, उनको बांध करके रख गया और घर में सबसे पूछा, किसी ने भी मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा ये तुम पाप करते हो इसके लिए तुम भोगेगा, हमने बचपन में तुमको जो खिलाया पिलाया पाला पोसा, हमने तुमको पाला पोसा, उसके लिए हम जिम्मेदार। अब तुम हमको कैसे पाले पोसेगा बूढ़ा अवस्था में, इसके लिए तुमको जिम्मेदारी, इसका पाप तुमको। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। अंत में नारद जी के आकर के चरणों में गिरे। नारद जी ने उनको भविष्य जो क्या है उसको दिखलाया। लाखों लोग जिन प्राणियों का वध हुआ है वो लोग उनके सामने आ गए और आकर उनको मारने के लिए तैयार, बेहोश होकर के गिर पड़े। उन्होंने पानी प्रोक्षण करके उनको जीवित कर दिया। इसके बाद में उन्होंने कहा जैसे अब हमको आप शरण दीजिए, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। अजय ठीक है, यहीं पर बैठ करके तुम राम राम करो। बहुत चेष्टा की, राम राम नहीं निकला तो कहा अच्छा तुम मरा मरा कर। भाई मरा 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 करते भी कर। एक वर्ष नहीं सहस्त्रों वर्ष बीत गए। नाम का साधन इतना सहज नहीं है जितना कि हम लोग समझ रहे हैं। बतलाओ ऐसे जब एक जगह पर बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया और करने लगे, तब उनको कितना वर्ष लगा? सहस्त्रों वर्ष लग गए। और तब उनको दिव्य ज्ञान हुआ, भगवत दर्शन हुआ और तब भूत भविष्य के वो ज्ञानी सब कुछ देखने वाले बन गए। नाम के प्रभाव से जो चाहे वो कर सकते थे और एकदम चिरजीवी बन गए। कभी मरने वाले रहे नहीं, इनके मरने की बात कहीं नहीं सुनी जाती। व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं और लोग हैं, कपिल जी हैं, इनसे मरने की बात अजर अमर ये सब जाते हैं नाम के प्रभाव से। और सब जगह जैसे नारद जी जाते हैं इनका भी उसी रूप में सर्वत्र विचार, ऐसे ऋषि बन गए। एक दो दिन में इसका फल नहीं देखा जाता, आज ही बोया आज ही फल निकल गया, ऐसा नहीं। फल तो आज ही से आरंभ हो गया किंतु प्रेम फल देने में बहुत काफी समय लगता है। खूब धैर्य के साथ में सही शुरू हो करके इस नाम का करते करते तब जाकर के कहीं हमारा कल्याण होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक लेख, उसमें देखा नाम और मंत्र में कुछ फर्क देखा, अंतर देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कह रहे हैं नाम और मंत्र में कुछ पार्थक्य जैसा है, वैशिष्ट है। क्या? मंत्र माने मन की रक्षा जो करता है उसको कहते हैं मंत्र। मन की प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वो मन सब समय विषयों की चिंता करता है, वैश्विक सुखों को चिंता करता है, उस मन की जो रक्षा करता है उसको कहते हैं मनना त्रायते। माने मन के विषयों के मनन करने से जो रोकता है इसका नाम है मंत्र। और यह मंत्र क्या करता है? जो विषयों में जो मन फंसा हुआ है उसको वहां से निकाल करके क्रमशः भगवान की लीला कथाओं में, नाम में, अप्राकृत विषय में, रूप गुण लीला चिंतन में उसको मनन कराने लगता है, उसको शक्ति संचरित करता है मन में और उसकी रक्षा करके विषयों से जो विषयों का प्रभाव उस पर ना पड़े भगवान के तरफ में उसको करा देता है। इसलिए उसको कहते हैं मंत्र। प्राण प्राण हम लोग अभी विवश हैं, रोगी होने के लिए विवश है, क्रोधी होने के लिए विवश है, भोगी होने के लिए विवश है। इतनी शक्ति नहीं है ये मन को भोगों से निकाल ले, मन को ऐसा कर दें कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। मन समर्थ नहीं है, इसी रक्षा करने को कहते हैं वो मंत्र होते हैं। इसलिए मंत्र या और भगवान से संबंध एक कायम कर देता है।
जब मन विषयों से जब विमुख होकर के भगवान के तरफ में उन्मुख हो जाता है और भगवान से संबंध करा देता है, कोई पांच में से कोई एक संबंध, तब मंत्र का काम समाप्त हो जाता है। उस समय शुद्ध हरि नाम उच्चरित होता है। शुद्ध जो नाम है वो संबोधनात्मक नाम है, हे कृष्ण, हे हरे, हे राम। इसमें कोई चतुर्थी विभक्ति और ये सब चीजें नहीं है, स्वाहा, नमः इत्यादि नहीं लगा, डायरेक्ट भगवान का नाम संबोधना। तो प्रक्रिया आरंभ होगी कहां, मंत्र से, और समाप्ति होगी नाम में, समाप्ति होगी भगवान को मिला देगा। तो नाम इतना शक्तिशाली चीज है, किंतु इसकी प्रक्रिया में हम कितने दिन से जगत में हैं, लाखों लाखों ब्रह्मा बदल गए, हम लोग अभी तक मायाबद्ध हैं। क्यों मायाबद्ध हैं अभी, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि वहां जो जाता है लौट करके नहीं आता। जद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम, जो वहां एक बार चला गया वहां से लौट करके नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये अभी तक हम लोग गए नहीं। इसी तरह से संसार में अनंत काल से भोग रहे हैं। अभी जो समस्याएं हैं केवल इसी जन्म की नहीं है, जो बेटे ने बाप को अलग कर दिया समर्थ होने पर, और उसको जो दुख हो रहा है, तरह तरह के रोग हो रहे हैं, कभी धनी कभी गरीब, कभी देवता कभी क्या हो रहा है, कभी देव कभी दैत्य, कभी दास कभी प्रभु, कभी कीट कभी पतंग कभी देवता, कभी राजा कभी प्रजा, और कभी दुखी कभी सुखी, ऐसे हो रहे हैं। न जाने कितने बार गधे का जन्म होगा, कितने बार हम लोग देवता हुए होंगे, कोई ठीक नहीं। कभी कभी ये स्त्रियां भी बहुत बार पुरुष हो गई होंगी, और कभी हम लोग भी कितनी बार स्त्री हुए होंगे, कहानी कौन कौन सी जोनी में। और अभी भी हम समझते हैं कि ये पहला हमारा जन्म है, इस जन्म में हमारी समस्याएं सब हल हो जाए। किंतु जब वृद्धावस्था आती है तब हम लोग समझ जाते हैं, जैसे देखो अब हमारी समस्याएं हल नहीं होगी बल्कि और। किंतु उसी समय में ये मंत्र और हरिनाम यदि उसको ऐसा मिले, कोई साधु संग मिल जाए और ऐसे कोई दयालु दाता मिल जाए, तो हमारे जितने प्रकार की समस्याएं हैं सदा के लिए, इसलिए ये मंत्र अप्राकृत, ये मंत्र और भगवान नाम है। अब हम लोग चलते हैं। तो ये गोपियां दो प्रकार की बतलाया, उसमें पहले प्रकार की हम बतला रहे हैं, जितने प्रकार के संसार में दुख हैं, जितने प्रकार के भी दुख हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अभी हम लोगों की तो उम्र 60-65, किसी की हम लोगों की 72-73-75, किसी की 80, किसी की 90 तक। मान लिया कि 100 वर्ष यदि जीवित रहना है, बाकी जो है उसमें कौन कौन सी समस्याएं भी, कैसे कैसे रोग आएंगे और कितना दुख होगा, कोई कल्पना कर सकते हैं? अभी तो इसी में हम लोगों का जीवन कैसा तड़प उठ रहा है, पीछे न जाने कौन सी समस्या है। स्त्री पुरुष हैं, दोनों में से कोई एक को आगे जाना पड़ेगा। अभी दोनों हैं, अभी तो कुछ है बल, और कुछ दिनों के बाद में ये भी खत्म। कौन पानी देगा? और उस समय में यदि लकवा हो गया ना, तो देखो ये कैसी। अभी कल एक रोगी के पास में गया था, कभी बड़े बलवान, अभी खूब बुद्धिमान और बड़े धनी थे। कल गया तो उनका कोई हाथ ही नहीं उठ रहा, पैर नहीं चल रहे, और देखते देखते एकदम रोने लगे। मैंने उनको बहुत भारू बनाया, जहर नाम करो, मुख तो तुम्हारा भगवान ने ठीक अभी दे रखा है, मुख से हरि नाम कीजिए, चिंता कीजिए भगवान की, और कुछ मत कीजिए। अब तो देखा तो, इसलिए जितने प्रकार के दुख हैं, जीवन उत्तप्त हो गया है। तब कथा अमृतम, आपकी कथा ये अमृत के समान, उन सब दुखों को सदा के लिए, विपत्तियों को दूर कर दे, ये हरि नाम का उच्चारण। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही अमृत। कब भगवान का नाम भी वैसे ही है, कब ही रीणिता, इसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति इसको ले जाओ सर, फटाओ ले जाओ घर का, घर ले जाओ, क्या बता रहा
कभी भी रीणिता।
यदि किसी भी प्रकार का दुखी आदमी हो, चाहे संसारी, चाहे पारमार्थिक, चाहे आध्यात्मिक, चाहे अधिभौतिक, अधिदैवी, अथवा इससे भी ऊपर उठ करके ज्ञान के लिए हो, मुक्ति के लिए हो, इसके ऊपर भगवत प्राप्ति के लिए हो, भगवान की विरह का दुख हो, सब इस भगवान नाम से, भगवान की कथा से ये दूर हो जाते, इसलिए ये अमृत है। अमृत तीन प्रकार के बतलाए गए, एक होता है
स्वर्ग अमृत,
स्वर्ग का अमृत जिसको गरुड़ जी कभी कभी ले देते हैं, कभी कभी मोहिनी बन करके देवताओं और दानवों में बांटने के लिए मोहिनी जी प्रयास करती हैं, देवताओं को पिला देती हैं, दानवों को नहीं पिला देती, वो है। वह अमृत पा करके आदमी और भी दुखी हो जाता है, आदमी की आयु तो कुछ बढ़ जाती है देवताओं की, किंतु बड़ा दुखी हो जाता है। कैसे? अपने को शक्तिशाली समझता है और उस समय में उनसे भी शक्तिशाली आकर के, जैसे इंद्र थे, देवताओं ने इंद्र को भगा दिया मारकर, और अमृत थे इसलिए मरे नहीं, और भागते भागते कैलाश के पास में मानस सरोवर में
कमल के
नीचे जाकर के छिप, जैसे कि ब्रह्म हत्या हमारा पीछा ना कर सके उसके लिए, और कितने हजार वर्ष तक की कोटि वर्ष तक उस नाल में छिपे रहे, कितना आनंद हुआ, काम भी नहीं जाता, क्रोध भी नहीं जाता, कोई भी इंद्रियों की क्रिया नहीं जाती। पहुंच गए गौतम स्त्री की स्त्री के पास और उन्होंने उसको मारा और अभिसंपाद दिया, इतनी ईर्ष्या, कोई स्वर्ग न ले ले इसके लिए राजा सगर का घोड़ा चुरवा लिया, पृथ्वी महाराज जी का यज्ञ ध्वंस करने की चेष्टा की, और भी कितनी बार क्या क्या किया उन्होंने, कुरु महाराज जी का भी किया, इसी तरह से सब समय उनके अंदर में ईर्ष्या भरी पड़ी रही। इसलिए कहते हैं अमृत पीने से ये चीजें तो बढ़ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह, एक होता है मोक्षामृत, जितने प्रकार के दुख हैं इस जगत में जन्म लेने पर वो सब दुख दूर हो जाते हैं यदि मोक्ष मिल जाए तो, किंतु वहां पर कोई सुख नहीं है। और एक होता है प्रेमामृत, प्रेमामृत कहते हैं भगवान के सेवा रूप प्रेम, उसका अमृत, इसके द्वारा सब कुछ उसको मिल जाता है, यही मनुष्यों के लिए चरम आवश्यकता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो नाम या कथा है भगवान की, उसको जो देने वाले हैं भूवि गृणन्ति ते भूयोदय, वही संसार में परम दयालु है, वो कैसा तप्त, कैसा भी जीवन तप्त हो वो इससे दूर हो जाता है। गोपियों का क्या दुख था, कृष्ण से निरख, इसी कीर्तन के माध्यम से ये कीर्तन करती करती भगवान को वो पा गए। कभी रीणितम, कभी मैंने व्यास जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, शंकर जी, ऐसे लोग जो हैं इनके द्वारा ईणितम माने सब समय प्रशंसित, ये लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। कैसे? भृगुबर माने किसको कहते हैं, भृगुबर नरमात्रम तारे कृष्ण नाम, भृगुबर कहते हैं शुक्राचार्य को, तो कहते हैं हे भृगुवर मधुर मधुर मे तत्मंगल मंगलान सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम सत्थया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम। हे भृगुवर, भृगु जी के पुत्र हैं ये सर शुक्राचार्य। नाम का कभी कभी कोई व्यक्ति श्रद्धा की तो बात छोड़ दो और हेलापूर्वक भी भगवान नाम करता है, चलते फिरते उठते बैठते छींकते हुए पदपूरण में, पदपूरण माने रामा हो रामा इत्यादि इस तरह से यदि करते हैं तो भी उसकी मुक्ति अनायासी हो जाती है नर मात्र की। ये कैसा है? वेद रूपी कल्पलता का सुंदर फल है, मधुर से भी मधुर है। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगला, समस्त मंगलों में भी मंगल। किंतु आज ही चट रोटी और पट खा लिया ऐसा नहीं, कुछ दिन उसका सेवन करना पड़ेगा तब जैसे होता है। एक गाय का दूध पीने के लिए एक बछड़ी को कितना दिन पालना पड़ता है, एक आम की गुठली को लगा करके पेड़ होने के लिए कितना दिन तक प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसी तरह से भगवान नाम सबसे मूल्यवान है, इसको कुछ दिनों तक सेवन किया जाए इसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने, सब ऋषियों ने, महर्षियों ने नाम की महिमा को गान किया है, कथाओं की महिमा का गान किया है। यहाँ तक कि कथाएं ऐसी होती हैं, भगवान की कथा यदि सुना तो सुनने से भगवान कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हृदय को निर्मल कर देते हैं। हम लोगों को निर्मल करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप बंधु के समान हृदय में प्रवेश करके और हृदय को परम निर्मल बना करके और उसमें बैठ जाते हैं। कलमश आपहम, जितने प्रकार के कलमश, कलमश माने पाप और पाप का फल, पाप और पाप कर्मों का फल, सबको ये दूर करने, अपहम माने दूर करना, दूर कर देते हैं भगवान का। कोई भी व्यक्ति जगाई मधाई भी इतना पापी, किंतु जब उन्होंने सुनाया नित्यानंद प्रभु हरिदास ने उनको ना, उन्होंने कहा कान पकड़ लिया, आर नारे बाप, आज से पाप नहीं करूंगा। यदि भगवान का नाम गुरु से ले करके और कोई व्यक्ति पाप करता है, दूसरों को ठगता है, शुद्ध चित्त नहीं है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरों को ठगता है, तो उसके समान और पापी और कोई नहीं होगा। भगवान का नाम नहीं लेकर के उसका नहीं जानता है, अनजान में यदि झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, तो उसके लिए तो उसका थोड़ा सा फल मिल करके वो शांत हो जाएगा। किंतु भगवान का नाम लेकर के धाम में रह करके यदि ऐसा पाप करता है तो क्या होता है, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए हरि नाम लेने के बाद में इन सब चीजों को, चोरी चमारी, झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, गुरुजनों को सम्मान नहीं करना, उनको अपमान करना, ये सब चीजें सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो ये वज्रदीप हो जाते हैं। वो थे पाप, अब क्या हो गए, अपराध। वैष्णव के साथ में ये सब का करने से, उनसे झूठ बोलने से, चोरी करने से, उनको अपमानित करने से, मारने से, भगवान के प्रति जानबूझ करके कुछ करने से, तब ये महा अपराध हो जाए। उन अपराधों से भाई मुश्किल है, नमा अपराध बन जाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहने की चाहिए, चेष्टा करने की चाहिए। तो सबसे बड़े जितने भी अपराध, उन अपराधों को दूर करने वाले भगवान की कथाएं हैं। ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा सुने और उसका पालन करे तो कुछ दिन में वो भी पवित्र हो जाएगा। श्रवण मंगलम, कितने देर में होगा, तत्क्षणात् क्रिया आरंभ हो जाएगी। एक आदमी बीज खेत में दिया, मिट्टी में लगाया, पानी दिया, सींचा, कितने दिन में अंकुर होना आरंभ हो तखना क्रिया आरंभ हो जाए, किंतु समय लगे। उसी तरह से भगवान की कथाओं को सुनने से श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल उसका आरंभ हो जाए, पाप से चित्त वृत्ति हट जाएगी, पाप करने की इच्छा नहीं होगी। यदि मन से यदि हम एक दिन भी हरि नाम करें, मन से शुद्ध चित्त से, पापों से चित्त वृत्ति अपने आप में झूठ से दूर हो जाए, इस प्रकार से सब सद्गुण उसमें आ जाए। सीमादातम श्री मने शोभा, सौंदर्य, संपत्ति, सब प्रकार के गुण, आततम माने विस्तार, अर्थात जितने प्रकार के गुण हैं, शोभाएं हैं, संपत्ति है, सौंदर्य है, ये सब का व्यापक रूप में विस्तार होने लगता है उसके, यदि कोई इन कथाओं का श्रवण करे वो ऐसा हो जाएगा, उसको विस्तार करने वाले। भूरी गृणंति ते गुरुदाज, ऐसे नाम को जो ग्रहण करते हैं वही संसार में सबसे अधिक दयालु रहता है। नाम और कथा का वितरण करने वाले बिना किसी जागतिक स्वार्थ के, उनके समान और कोई दयालु दाता नहीं। ये तो इसलिए कहना पड़ता है कि आज का 100 में से